क्या ये पॉसिबल है कि हम जो है मिसाल के तौर पर जिस तरह से हम टीनेज जब हम रहे या 20 साल से 30 साल में जो खुराक हम इस्तेमाल कर सकते थे और हम लोगों का मैदा भी कबूल करता था वो उस दौरान भी करें?
नहीं, ये बिल्कुल मैं ये बताता चलूं कि जो खुराक आप यंग एज में या 20 साल की उम्र में या एडल्टहुड में आप लेते हैं, वही खुराक आप कहें कि मैं बुढ़ापे में भी वो लूंगा। हमारा निज़ाम इन्हज़ाम वैसा नहीं रहता कि आप उस चीज़ को उस तरह बर्दाश्त कर सकें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक्सरसाइज है। अगर किसी ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया हो अपने जिस्म को और एक्सरसाइज के थ्रू और ख़ुराक इस तरह यूज़ करते रहे, तो यकीनन तौर पे आप ये कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो इस वाले मसले को जो कि उम्र की बुनियाद पे खुराक ली जाए उसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं या कर लेते हैं।
तो डॉक्टर साहब, यानी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार
जी
रहे हैं,
जी
अब बिल्कुल हम नहीं कह सकते एथलीट हैं
जी
या कुछ और हैं, बहरहाल बहुत ही प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें एक मुनासिब खुराक इस्तेमाल करनी होगी। वो
बिल्कुल,
खुराक किस तरह से पता लगाया जाए कि कब हमें क्या खाना है?
ये बड़ी अहम बात है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि बुढ़ापे के असरात क्या क्या हैं। एक तो ये है कि बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि ये 60 ईयर्स के बाद के जो हमारे पास लोग आते हैं, अमूमन जो आम जिंदगी में हैं, और ये बीमारियां नहीं हैं, मैं उनके बता दूंगा जो जिस्म पे हमारे असरात आते हैं। और एज जो है उसको आप असरात को कम किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल आप ये कह दें कि उम्र जो है उसको आप रुक छुपा दें या रोक दें ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके असरात आने से उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिस तरह स्किन पे आ जाता है, रिंकल्स बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्या, दांतों का लॉस ऑफ टीथ, और जब दांत हो जाएं और वो बिल्कुल ना हो, तो उसकी वजह से खुराक में हद्दुल मकदूर कोशिश की जाती है ऐसी खुराक दी जाए जो चबाने, बाज़ दफ़ा हमारे कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो खाने से चबाने से कई चीज़ें हमारी हजम मुंह में हो जाती हैं, और अगर वो चबा ना सकें और उसको सिर्फ क्या किया जाए, सॉलिंग
निगल
करें,
जाए।
निगलें, जब वो निगलेंगे तो उसका क्या होगा। और जिस तरह आपने बात की कि निज़ाम इन्हज़ाम जो है हर 30 साल के बाद 1%, हर साल में 1% के तौर पर आप कहें कि निज़ाम इन्हज़ाम कमज़ोर होता जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मसला है इनडाइजेशन का। इनडाइजेशन का ये है कि उनमें हजम करने की अहलियत और काबिलियत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि उनकी सलाहियत कम होती जाएगी, उसको सही तरह वो हजम नहीं कर सकेंगे और निगलेंगे खुराक को, जिस तरह निगलेंगे खुराक को जिसकी वजह से जब मैदा ख़राब हो जाए, मैदा स्टमक, तो ये जड़ है बीमारियों की। बुढ़ापे में ओबेसिटी भी हो सकती है, आप ये कह सकते हैं कि उनका जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, या बहुत ज़्यादा निकाहत और कमज़ोरी। 70% लोग ऐसे हैं जो निकाहत या एनर्जी उनकी जो है वो कम कम हो जाती है और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले असरात देखें कौन से, उन असरात को देखते हुए आप खुराक को उनके लिए आप सिलेक्ट करेंगे।
अच्छा, ख्वातीन और मर्दों में फ़र्क है?
हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है कि उनके हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं 40 साल के बाद, जो अमूमन फीमेल्स हैं उनमें हार्मोन्स की होती है डेफिशिएंसी, जिसमें बहुत हद तक एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कमी हो जाती है उनमें, और जैसे उनके एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी आती है जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, बुरपुरी हो जाएंगी। और आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा फीमेलें गिरी हैं और एक मेल गिरे हैं, अपने ही वजन पर हड्डी टूट जाएगी फीमेल की बनिस्बत मेल के, और बहुत हद तक उनके यहाँ ज़्यादा चांस होता है कि ये जो फीमेल्स हैं उनमें हड्डियों का भुरभुरापन, जिसको हम नॉर्मली इसके बड़े कॉमन है कि ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता नहीं है जो कि बोन को काफ़ी हद तक मजबूत करने में किरदार अदा करता है। तो इसलिए मैं बताता चलूँ जो फीमेल साइड है उनमें कैल्शियम की खुराक की ज़्यादा लेना चाहिए बनिस्बत मर्दों के। लेकिन फिर मैं एक चीज़ कहूँगा, उससे पहले आप अपना ज़रूर टेस्ट करवाएंगे और उसकी मिकदार चेक करें कि आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है भी या नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि 80% से 90% तक औरतें जो हैं 40 साल के बाद उनको कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी हो जाती है।
डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम मसला होता है कि खाना हजम नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ साथ साथ दूसरी बीमारियाँ भी चल रही हैं, तो इसका क्या किया जाए?
अमूमन अगर मैं ओल्ड एज के साथ डिजीज़ वो बीमारियां बताऊँ जो अमूमन हमारे यहाँ देखा जाता है स्पेशली इस एरिया में, वो ये है कि डायबिटीज़, शुगर का होना, और साथ साथ में क्या होता है कि उनमें मस्कुलोस्केलेटन, मैं ये कहूँगा हड्डियों का बुरबुरापन दूसरे नंबर पे, और तीसरे जिससे आपने कहा निज़ाम हाजमा, और हार्ट की, दिल की बीमारियाँ। ये चार एक ऐसी बीमारियाँ हैं जो कॉमन हमारे बूढ़ों में हो जाती हैं, अनलेस अनटिल एक्सेप्शनल कुछ हैं कि जो कि एक्सेप्शनल हैं कि जिनमें ये बीमारियां नहीं होती, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बड़ी डिटर्मन तरीके के साथ गुजारी होती है, और उनकी दी वो खुराक जिस तरह मैंने पहले कहा, वो अगर वो खुराक खाएं भी जो जवानी में वो खाते थे, वो उसको बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। तो उसमें ये ख्याल पहले सबसे पहले ये है कि जो आपने खुराक लेनी है आप उन बीमारियों को ज़रूर देखें कि उन बीमारियों में आप कौन कौन सी अदवियात साथ ले रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि शुगर के जो मरीज है, शुगर के मरीज़ के लिए कहा जाता है वो ये सोचा जाए कि वो खाए क्या, यानी कि वो इस हद तक मुश्किल होता है कि उसको खाने के लिए क्या चीज़ दी जाए, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है ना, एक टाइप है खुराक में, तो अगर वो भी वो चीज़ दे रहा है तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। अगर वो चपाती भी ले रहा है ना गंदम की, जो हमारे यहाँ कॉमन है, तो अगर वो भी खा रहा होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो जिसके हम उनसे कहते हैं जौ का आटा यूज़ करें, लेकिन किस हद तक करेगा, चावल ना खाए ज़्यादा वो भी करेगा,
बहुत मुश्किल है,
वो बहुत मुश्किल है। तो इस तरह उनके लिए खुराक में ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ और जो फल हैं उनको अपने खुराक में शामिल करें,
जिस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम है हिंदुस्तान पर।
हाँ, ये बहुत ज़्यादा कम है। और फिर दूसरा ये चीज़, अगर ये हो जाए, अगर किसी को चिकनाई, मसलन ये आप ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया। और मैं आपको बताऊँ इस वजह से क्या होता है, एज जिस तरह बढ़ती है शरियानों में सूखने की जो ताकत है वो कम हो जाती है, यानी कि उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो ब्लड फ्लो किस तरह बेहतर करेगा। अब दरमियान में क्या होता है, चिकनाई उन्होंने खूब खाई हुई होती है, और जिन्होंने जवानी की उम्र में खूब खाया होता है और खूब काम भी किया होता है, उनके लिए मसला कोई नहीं है। मसला उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठ के काम करने के हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है उसने, हाँ मैं जाता हूँ ऑफिस में, बैठता हूँ, काम करता हूँ, चलाता हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अब क्या होगा, वो चिकनाई जिस्म में जमा होती जाएगी। जब जमा होती जाएगी या तो वो एडिपोज टिश्यूज़ की सूरत में जिस्म में कहीं ना कहीं जमा होगी, और मोटापा कहा जाता है बीमारियों की जड़ है, वो होना शुरू हो जाएगा, या शरियानों में चिकनाई क्या हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि बुढ़ापे की वजह से शरियानों जो हैं और वरीदे जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जो उनमें इलास्टिसिटी है उसमें जो स्प्रिंगी फंक्शन है उनका, कि वो सिकुड़ेंगी और फैलेंगी तेज़ी के साथ, वो नहीं होता, वो कड़ाहट में चले जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। अब क्या होगा, खून का बहाव भी रुकना शुरू हो जाएगा, दिल पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिल को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और खुराक क्या है, उसी तरह वो चिकनाई ले रहे हैं। इससे उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो चिकनाई की वो खुराक लें जिसमें लो फैट डाइट हो। लो फैट डाइट में ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो, लो डेंसिटी लिपिड्स, यानी कि जिनमें डेंसिटी जिनकी कम हो, वो वाले जो हैं वो बहुत हद तक HDL लें, VLDL को काफ़ी हद तक, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स को काफ़ी हद तक कम करें। मैं एग्जैक्ट इसलिए ये बोल रहा हूँ VLDL, क्योंकि हम अक्सर जब टेस्ट करवाते हैं तो अल्फाज इसी में आपको बिल्कुल मिलते हैं, इसलिए अगर मैं उर्दू का भी ट्रांसलेट ऐसी करूँगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा तर्जमा करूँ। तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि चिकनाई की हद्दुल मकदूर कोशिश करें कि कम से कम मकदार यूज़ करें। अगर वो लेना भी चाहते हैं तो मछली को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ले सकते हैं। ओमेगा फैटी एसिड 3 उसमें होता है, और वो बहुत हेल्पफुल है, मददगार साबित होता है उस चिकनाई को तोड़ने में। और दूसरा ये कि नट्स यूज़ किए जा सकते हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन उतना यूज़ करें, काजू, बादाम और अखरोट, लेकिन बहुत कम मकदार में, और ये बहुत ज़रूरी। और जिन लोगों को हाजमे का मसला है और कोशिश करें वो हाई फाइबर डाइट यूज़ करें। हाई फाइबर डाइट में ये फ़ायदा होगा, इसबगोल यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रूट ऐसे हैं उसमें यूज़ किया जा सकता है, अगर तरबूज है तो तरबूज बहुत इफ़ेक्टिव है।
अच्छा,
आप उसके अलावा एप्पल, सेब है, सेब अलग सुबह वो यूज़ करें, उसमें फाइबर है।
डायबिटीज़ वाले भी इस्तेमाल,
डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि जिसमें मकदार अगर उनकी है इंसुलिन पे हैं या वो ग्लूकोफेज मेडिसिन पे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हमें उनकी खुराक बतानी होगी। और ये आपको बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अलल सुबह जब वो सुबह उठते हैं, एक डॉन्स फिनोमिना है, उसमें ये होता है कि डायबिटीज़ शुगर के मेशन में कि रात भर उसने कुछ खाया लेकिन सुबह उसको शदीद भूख लगती है, और इस हद तक भूख लगती है अगर उसको कुछ मीठा ना दिया जाए वो बेहोश हो सकता है।
अच्छा,
उसके लिए हम स्पेसिफिक उन कहते हैं शुगर के मरीज, ये नहीं कि हत्तुल मुदुक बंद कर दी जाती है शुगर, एक ऐसा फेज भी उन पर आता है, एपिसोड एक ऐसी आती है जब उनको बहुत ज़रूरी वो चाहिए होता है। तो अलग सुबह हम अक्सर कहते हैं उस वक्त उनको भूख ज़्यादा लगती है, 3 घंटे 4 घंटे का भूख लगती है, रात भर उन्होंने रात खाना 8 बजे का खाया, और फिर अलग सुबह क्या हुआ, सुबह फजर के लिए उठे और उस वक्त इस हद तक नकाहत वो कुछ खा ना सकें, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ मीठा, खजूर रख सकते हैं, कुछ एक दो ले लें ताकि उनमें एनर्जी आ जाए, ये नहीं कि वो उसकी बहतात शुरू कर दें।
डॉक्टर साहब, ये होता ही है कि अक्सर बीमारियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन बिलफर्ज हम ये फ़र्ज़ करें कि कोई बीमारी नहीं है, तो किस तरह का खाना वो रखें, और ये कि मिसाल के तौर पर वो भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तरफ जाएं या मतलब कभी कभार दूसरी चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं।
इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खाना किस तरह का हो जो एक सेहतमंद तवील उम्र के हमारे या ज़ायद उम्र लोग मौजूद हैं। सुबह नाश्ता और शाम का खाना तो कभी भी ना छोड़ें। हमने अक्सर देखा है कि लोग सुबह का नाश्ता कर लिया, दोपहर को कुछ खा लिया, रात को नहीं खाना कुछ। लेकिन मैं बताता चलूँ, सुबह बादशाहों की तरह कीजिए और रात को फ़कीरों की तरह, दरमियान वज़ीरों की तरह। तो मैं ये कहूँगा सुबह का जो नाश्ता है वो भरपूर अंदाज से कीजिए। अपने खुराक में दही का इस्तेमाल करें ज़रूर उसको, और मैंने जैसा कहा अगर फ्रूट अगर फल है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने सेब का आपको बता दिया, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और दही का मैं इस्तेमाल ज़रूर कहूँगा। और हर तरह कोशिश करें कि जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, बाज़ लोगों को बहुत चटपटा खाने की आदत जवानी में हुई होती है, कभी हॉस्टल लाइफ में गुजारा किस तरह किया, लेकिन कोशिश ये करें कि वो ज़्यादा मिर्च और स्पेशली सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि होता यूँ है इनमें उम्र जिस तरह बढ़ती है एसिडिटी के प्रॉब्लम में बढ़ते हैं तेज़ाबियत के। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जड़ रिफ्लेक्स या जो इसका मैदे का है प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें मिर्च मसाले की खुराक ज़्यादा ना यूज़ करें, दही को अपने इस्तेमाल करें, सब्जियों को करें और फलों को करें।
अक्सर ये होता है डॉक्टर साहब, एक ख़ास उम्र के बाद ना किसी चीज़ से लगाव रह जाता है ना कुछ, और उसका बराह रास्त असर पड़ता है खुराक पर, या खाना छोड़ देते हैं। ये ज़्यादातर यही होता है, खाना छोड़ देते हैं। किस तरह से फिर से उनको यानी एक उस पर एक वापस लाया जाए इस लाइन पर?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक साइन है कि लॉनीलेस और एनजाइटी और डिप्रेशन उम्र के साथ आ जाता है, और बाज़ दफ़ा उनको इंटरेस्ट ज़िंदगी में नहीं रहता। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स खेल चुके हैं। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे मराहिल से गुजरता है आदमी, कुछ ऐसे तजुर्बा से गुजरता है, उस पर बहुत सारे असरात। और याद रखिएगा कोई ये जो एनजाइटी डिप्रेशन या लॉनीलेस है या ज़िंदगी से अब ये कह सकते हैं उनका दिल उजाड़ हो चुका होता है, वो क्या करते हैं उनके दिमाग में कोई चीज़ आती है और इनका डायरेक्टली इफेक्ट आता है जिस्म पे, नकाहत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और निज़ाम हाजमा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का असर आता है। आपने कभी देखा हो, कभी वायवे के लिए गए हों आप, या आपको कुछ ऐसा इम्तहान हो जिसमें टेंशन हो, फ़ौरन देखेंगे स्टमक अपसेट हो जाता है।
बिल्कुल,
ये डायरेक्ट लिंक है। तो उसमें होता यूँ है कि ऐसे लोगों के लिए उस तरफ लेकर आने, इनको देखा जाए कि इन्होंने अपनी लाइफ पे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा। हो सकता है कोई एक आदमी किसी खास एज तक, उम्र तक वो काम करता रहा हो, या उसकी शौक हो, किसी को कोई खेलों में शौक होता है, किसी को कुछ और होता है, तो आप उसको नोट करें और देखें किस एज के बाद ये इंटरेस्ट कम से कम होता रहा। कोई दोस्त हो सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा 30-25 साल पुराना कोई दोस्त, आप उसकी बातें उनसे करना शुरू हो जाए। मेरे पास कुछ ऐसे मरीज़ भी आए, वो लोग उन्होंने अपनी लाइफ बड़ी जिंदा दिली से गुजारी। हुआ यूँ कि वो बैठे हुए कहते हैं आज कल की जो बेटे हैं, औलाद हैं, पोते हैं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। हमारे सिर्फ बैठे उन्होंने ये कहा कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा मुझसे शेयर करना चाहें, और वो रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। कुछ चीज़ें बहुत आम होती हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें सुनना शुरू हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी ये एक ट्रीटमेंट होती है। जो बंदा एक अच्छा लिसनर होता है ना, सुनता है, सुनने में और बहुत कुछ सीखता है, और उनको आदत होती है इस वक्त इस एज में आके बोलने की, बच्चे की तरह। अब जो ओल्ड एज होते हैं ना, उम्र गुजरती है, उनमें वही खसूसियत होती है एक बच्चे में होती है। बच्चे को आपने ज़बरदस्ती कुछ खिलाना है, ना दिया बैठा है, और जब कुछ ना दिया उसकी आप चेहरे पर देखिएगा किस तरह रोना और वो शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कभी बता पाता है, कभी बताता नहीं है बहुत हद तक। तो इसलिए कोशिश की जाए कि उनके टाइम दें, उन्हें उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किसी गैदरिंग में बैठें। कुछ इंटायर ऑपोजिट होते हैं, कुछ गैदरिंग में भागते हैं, लेकिन उनको उस तरफ लाने के लिए उनका कोई ना कोई आपने चीज़ देखनी है जिसमें उनका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी लेते हैं, या दिलचस्पी किसी दौर में लेते रहे हैं, या किसी ख़ास पर्सनैलिटी को याद करके खुश होते हैं, या कुछ ख़ास प्रोग्राम देख के खुश होते हैं। उन चीज़ों को आपको मुकम्मल तौर पर तहकीक करनी पड़ेगी, कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने बड़ों के लिए।
आजकल की जिंदगी में तो हर तरफ मोबाइल ही मोबाइल है।
इस तरह उन्होंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में आपके लिए बड़ा टाइम निकाला है हमारे लिए।
बिल्कुल,
अब वक्त है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस सूरत में हम लोग अगर खुराक देना चाहें तो क्या करना चाहिए, किस तरह की खुराक दी जाए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता।
जी, मैं आपको उसका एक बता देता हूँ चार्ट के किस तरह हो। मैं आपको पहले अर्ज़ किया कि उन जो ओल्ड एज है उनमें अपनी खुराक में विटामिन और मिनरल्स को शामिल ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम फल ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, लेकिन वो खास एक मकदार तक ले सकते हैं ना फल भी। तो कोशिश करें मल्टी वाइटामिन अगर अच्छी अवेलेबल हैं आप उनमें से कुछ एक स्टार्ट करवाते हैं, शुरू करवा देनी चाहिए। मैं इस पर चीज़ पे हूँ कि मल्टी वाइटामिन ना सिर्फ इसका फ़ायदा आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, बल्कि आपके जिसम में जो नकाहत है और कमज़ोरी जो फील करते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा ये कि खुराक में मैंने जिस तरह बात की कि लो फैटी डाइट यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें, दही को दूध को इस्तेमाल करें लेकिन भलाई के बगैर, ये बहुत ज़रूरी है। रात को बाज़ लोगों की आदत है दूध पिए बगैर वो सोते नहीं हैं, तो यकीनन तो आप उनको दे सकते हैं, ये नहीं कि दूध देना ही बंद कर देंगे, नहीं मोटापा हो जाएगा, चिकनाई बढ़ जाएगी, हार्ट के मसले हो जाएंगे, नहीं आप ज़रूर दे सकते हैं। दही का इस्तेमाल वो ज़रूर करें सुबह में, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों में मैं बताता चलूँ कि कैरोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनमें, जो बहुत हेल्पफुल है स्किन के लिए भी और जिस्म के लिए।